તારીખ 26/3/1991 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા આગ્રામાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 5.
उस संस्कार के काल में किसी न किसी तीर्थंकर या श्री गुरु या ज्ञानी का निमित्त पड़ गया है भूतकाल में और संस्कार ग्रहण कर लिया है, आगे की परिस्थिति में वो नहीं आए। गुरुदेव जी महाविद्य क्षेत्र में थे, सिमंदर स्वामी की देशना सुनने को जाते थे, वहाँ उनको अध्यात्म की बहुत रुचि थी, कुछ कारण उनको संस्कार पड़ गए थे। इसी संस्कार तो निमित्त तो वहाँ बन गया भगवान का, अभी कोई निमित्त की आवश्यकता नहीं रही क्योंकि संस्कार लेके आए थे। तो संस्कार जीव को होता है, जैसे चिड़ियों को होता है, नारियों को होता है, मनुष्यों को कहीं चार गति में कहीं भी होता है। अगर बिना गुरु वर्तमान में होता है तो इसका ये मतलब है कि पूर्व में उसको ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बन चुका है। लेकिन एक वस्तु स्थिति ऐसी है कि बिना ज्ञानी न तो संस्कार होता है न तो आत्मोपलब्धि आत्मज्ञान होता है सम्यक दर्शन। तो ये हो सकता है कि पहले संस्कार मिले और बाद में बिना ज्ञानी की गुरु की उपस्थिति बिना फिर अपने आप से कोई शास्त्र मिल जाता है, किसी ज्ञानी का वचन पढ़ने में मिल जाता है, या भगवान का दर्शन करते हैं, या नारकी में वेदना को वेदते हैं, कैसे भी कोई भी निमित्त पड़ जाता है उसको स्वयं भीतर में स्वामी गुरु की उत्पत्ति हो जाती है।
जैसे गुरु की पर्याय आगे की पर्याय में काम नहीं करते,
हाँ
वैसे गुरु के संस्कार आगामी पर्याय
पर्याय ने काम नहीं किया है, ये शक्ति ने काम किया है। पूर्व की पर्याय तो चली गई लेकिन पर्याय कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक अंग था, जैसे हाथ कट गया पैर कट गया ऐसा नहीं हुआ है। ये एक ऐसी चीज है जैसे पानी के तरंग कहाँ जाते हैं, पानी में ग्रुप होते हैं, वैसे पर्याय द्रव्य में विलीन हो जाते हैं। द्रव्य में विलीन होते वो पर्याय रूप से नहीं रहते लेकिन इनके संस्कार में वो शक्ति रूप से रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है और ये माता को स्तन को दूध पीता है, कौन सिखाता है उसको? एक दिन का बच्चा को कोई सिखा सकते हैं? क्या वो सीख सकता है कुछ कि नहीं? उसको आहार संज्ञा नामक पूर्व संस्कार है, वो अपने आप ही दूध पीने लग जाता है। कैसे पीना, ये न सिखाने की चीज है न सीखने की चीज है। लेकिन पूर्व संस्कार को बहुत जगह में समझने में आता है कि कैसे हुआ। ऐसे एक पर्याय की सामर्थ्य जो है, संस्कार की जो सामर्थ्य है वो योग्यता और सामर्थ्य रहती है। ऐसा एक द्रव्य में योग्यता का धर्म है, उसको संस्कार कहते हैं, जो अपने स्वकाल में प्रकट होते हैं। जब प्रकट होते हैं तो पांचों सुनवाई इसमें इस वक्त होते ही है। दूसरा प्रश्न है, जो पर्याय द्रव्य का भी अंश है, द्रव्य द्रव्य शुद्ध और पर्याय अशुद्ध क्या है? ये अशुद्धता पर्याय धर्म है, ये प्रश्न दो दफे चल चुका है। पर्याय धर्म है, अगर पर्याय को स्वस्थान में नहीं रखी जाए तो इसमें विकृति या अशुद्धता अवश्यम भावी होने वाली है ही, ऐसा पर्याय धर्म है। इसलिए पर्याय के षटकार अलग है ऐसे भी कहने में आता है कि स्वयं कार्य करती है। प्रश्न, देव दर्शन की सही विधि क्या है तथा उस समय किस प्रकार के भाव होने चाहिए। देव मैंने वितराग देव हैं, ये कोई पत्थर की प्रतिमा नहीं है जिसे हमें मंदिर में विराजमान करते हैं, ये सिर्फ कोई पत्थर की प्रतिमा नहीं है न कोई धातु की प्रतिमा है। हमारी दृष्टि में, हमारी नज़र में ये एक स्वयंवैरण की पूर्ति होनी चाहिए। किस प्रकार से हमें दर्शन करना चाहिए ऐसा प्रश्न, कैसा स्वसंवेदन कि जो चतुर्थ गुण स्थान में आता है उसी जाति का किंतु इससे अनंत गुण घनिष्ठ, कितना विज्ञान घन, अनंत विज्ञान घन, ज्ञान का भी घन, ऐसे स्वसंवेदन की मूर्ति है। उसके दर्शन करते ही अपने स्वसंवेदन को स्मरण में लेना है या संभालना है, दो कार्य हो सकते हैं। जैसे जिसकी योग्यता, जो अज्ञानी है वो स्मरण करते हैं, ज्ञानी है वो संभालते हैं अपने विद्यमानता को स्वसंवेदन रूप में। तो ये जो दर्शन करने में तो हमें अंतर्मुख कैसे होना, ये समस्या अनादि से रही है। धर्म के क्षेत्र में हमने बहुत सी क्रियाएं की, लेकिन सभी क्रिया हमने बहिर्मुख भाव से ही की है, क्योंकि हमें अंतर्मुख कैसे होना ये अभी तक आता नहीं। अंतर्मुख होना उतना शब्द है, कथनचित वचन गोचर है। अंतर्मुख होना ये भाव कथनचित वचन अगोचर है। अब बहुत अल्प मात्रा में अंतर्मुख होना उतना ही शब्द हमें मिलता है, फिर भी हमें इसका भाव भाषित नहीं होता। तो भगवान की मूर्ति से हमें भाव भाषित हो सकता है। जैसे बच्चे को हम कहें कि गुलाबी रंग, तो तुम समझो कि वो गुलाबी होता है। गुलाबी रंग कैसे होता है, गुलाबी होता है, लेकिन बच्चा ने गुलाबी रंग भी देखा नहीं, और नहीं सुनने की चीज भी है। जो वर्ण है, रंग है, वो देखने की चीज होती है, सुनने की चीज नहीं है। तो सुनने से उसको पता नहीं चलता कि गुलाबी रंग कैसा है, तो उसको एक गुलाब दिखा दो कि देख बच्चा, ये गुलाब जैसा जिस रंग का है उसको गुलाबी रंग कहते हैं। फिर वो बच्चा अपनी जिंदगी में कभी गुलाबी रंग को देखने में भूल करने वाला नहीं है, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल ज्ञान हो गया। वैसे अनुभव ज्ञान है वो अंतर्मुखी ज्ञान है, अंतर्मुखी ज्ञान है वो अनुभव ज्ञान है। तो वो प्रैक्टिकल साइड से होता है, थियोरेटिकल साइड से होता ही नहीं, उस मर्यादा में वो नहीं आता। तो इसलिए ये भगवान की जो मूर्ति है, जो निरवशेष अंतर्मुख रूप से विराजमान है, इससे हमें प्रैक्टिकल साइड से अंतर्मुख बने का ज्ञान हो सकता है, भाव वासन हो सकता है। इस रूप में हमें दर्शन करना चाहिए। तीसरी, हमें शांति चाहिए, अशांति नहीं चाहिए। शांति कैसी होनी चाहिए कि जिसके देखते ही हमें शांति मिलती है। शास्त्र में तो ऐसे बताती है कि मुनिराज जब जंगल में ध्यानस्थ अवस्था में होते हैं, वो इतने शांत वितराग दशा में विराजमान होते हैं कि कोई जो ये हरण वगैरह हैं अपने जो खाद होते हैं वो इनके आंख के साथ खिलाते हैं, उसको पता ही नहीं रहता है कि मनुष्य है। अगर ये पता है तो वो तो पक जाते हैं, नजदीक समीप में नहीं जाते, इतना वो डरपोक प्राणी है। जब मुनिराज की इतनी शांति है जो नीचे के गुरुस्थान में है, तो फिर देव स्थान में कितनी शांति, इसका मूर्ति मंत स्वरूप अगर कोई है तो ये भगवान की मूर्ति है। आत्मा की और मूर्ति की शांति की मूर्ति यही जिनेंद्र देव की प्रतिमा है। इसलिए ये प्रतिमा पत्थर की है, धातु की है, लेकिन स्वयं संवेदन शांति और वितरागता की मूर्ति है। राग की कथा और राग के भाव हमें अनुभव गोचर है, श्रुत भयं परिचित है और अनुभव गोचर है, लेकिन वितरागता को नहीं जानी। और वितरागता तो अरूपी आत्मा की अरूपी पर्याय है, अरूपी आत्मा की अरूपी पर्याय, उसको मूर्तिमंत रूप में अगर देखने को हमें कोई जगह मिलती है, कोई स्थान मिलता है, तो ये भगवान जिनेंद्र देव है, जिसे हमें वितरागता की मूर्ति मिलती है। तो दर्शन तो इस नजर से, इस ढंग से, इस पद्धति से करने का विधान है शास्त्रों में, परमागमों में। ये रूढ़ी नहीं है कि हम हमेशा जिनेंद्र दर्शन करें, ये कोई रिवाज नहीं है, ये कोई रूढ़ी नहीं है। ये आत्मस्वरूप को संभालने का मौका है जब हम जिनेंद्र देव का दर्शन करते हैं। तो इसी ढंग से हमेशा दर्शन करना अवश्य आत्मलाभ होने का इसमें मौका है। शास्त्रों में और एक प्रश्न है, शास्त्रों में आता है कि ज्ञानी से ही ज्ञानवाणी सुनना तो बतलाइए कि ज्ञानी की पहचान किस प्रकार करें। प्रश्न बहुत कठिन है, चूंकि ज्ञानी की पहचान करने में एक पक्ष नहीं है, दो पक्ष है। जिसकी पहचान करनी है वो एक पक्ष में है, पहचान करने वाला का दूसरा पक्ष है। तो जैसे हीरे की पहचान चोरी कर सकता है, आम समाज का कोई आदमी नहीं कर सकता, वैसे अगर हमें ज्ञानी की पहचान करनी हो तो हमें इस लायक हमारी पात्रता की तैयारी होनी चाहिए। ये कोई बुद्धि की पहुंच नहीं है कि ज्यादा बुद्धि वाले हो तो ज्ञानी को पहचाने, कम बुद्धि वाला ज्ञानी को नहीं पहचान सके, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे पात्रता वाला आत्मस्वरूप को पहचान कर सकता है, वैसे ही पात्रता वाला ही ज्ञानी पुरुष को पहचान कर सकता है। अब देखिए कि ज्ञानी पुरुष तो चारों गतियों में होते हैं, लेकिन हमें मतलब है मनुष्य पर्याय से, क्योंकि हम मनुष्य हैं। 3 इंच कोई ज्ञानी होगा हमें पता नहीं चल सकता, और नारकी और देव के क्षेत्र में हमारा जाना संभव नहीं है। अच्छा, तो ज्ञानी कोई रंग रूप से तो पहचाना नहीं जाता, ये भी मनुष्य पर्याय में है, पर किसी भी पूर्व कर्म के उदय मध्य में उनकी स्थिति होती है। इनका कोई ऐसा नियम नहीं होता उसके ज्ञाने को ज्ञानी होने से कोई खास प्रकार की परिस्थिति मार में फेरफार वाली हो जाए कि जिससे हम पहचान लेने के ज्ञानी हो गए। ज्ञानी राजा भी हो सकता है, निरंक भी हो सकता है। ज्ञानी विद्वान भी हो सकता है, कम बुद्धि वाला हो ऐसा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, 8 साल के पीछे बच्चा भी हो सकता है, 8 साल के बाद। अच्छा, धनवान भी हो सकता है, दरिद्र भी हो सकता है, स्वरूप भी हो सकता है, कुरूप भी हो सकता है। मैंने कोई नियम नहीं है, पूर्व कर्म जैसा भी हो वैसी स्थिति हो सकती है बार में। इससे ज्ञानी को पहचानने में कोई बाह्य साधन उदय के संयोग का या उदय भाव का साधन काम में नहीं आता। सिर्फ ज्ञानी अपनी वाणी से पहचाना जाता है। श्रीमद् राजचंद्र जी के ग्रंथ में पत्रांक 679 पढ़ लेना के ज्ञानी को पहचान करने में ज्ञानी की वाणी से और अज्ञानी की वाणी में क्या अंतर है कि जिससे वो पहचान सके। यहाँ भी एक हरकत होती है कि जैसे ज्ञानी बोलते हैं वैसे अज्ञानी भी बोल सकते हैं। कभी ज्ञानी से अधिक अच्छी शैली में भी बोल सकते हैं। इससे हम ये नहीं पहचान कर सकते कि कौन अच्छा बोलता है इसलिए वो ज्ञानी है, कौन अच्छा नहीं बोल सकता इसलिए वो ज्ञानी नहीं है, ये भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन इनके कुछ दूसरे लक्षण हैं। इस दूसरे लक्षण में पुरवार पर अविरोधता ये ज्ञानी की वाणी का खास लक्षण है। आत्म पदार्थ है, उसमें कहीं कितने धर्म ऐसे हैं जो परस्पर विरुद्ध है, एकपणा अनेकपणा नित्यपणा अनित्यपणा शुद्धपणा अशुद्धपणा अस्थिपणा नास्तिकपणा सभी विरुद्ध है। तो ऐसे बहुत से धर्म और भी हैं जो परस्पर विरुद्ध होते हुए भी जिस ज्ञानी को पदार्थ दर्शन होता है, जिसके ज्ञान में पदार्थ सामने रहता है कि ये रूप से वो जो कुछ बोलता है उसमें कोई विरोध कहीं नहीं आता। लेकिन ये कौन पहचानेगा, ये एक सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है पहचानने वाले के पक्ष में। दूसरा इसका लक्षण ये है कि इसमें अपूर्वता होती है। पात्र जीव को ऐसा लगता है कि ऐसी बात हमने कहीं सुनी नहीं, कोई अपूर्व बात हम सुन रहे हैं। अपूर्व वाणी परम सूत सदगुरु लक्षण योग, ये अपूर्वता भाषित होती है पात्र जीव को। ये भी ज्ञानी की वाणी का एक लक्षण है। तीसरी एक बात ऐसी है कि जिसमें अनुभव प्रधानता होती है, यानी पुरुष अनुभवी पुरुष होने से इसकी वाणी में अनुभव प्रधानता आती है। अब अनुभव की कोई ध्वनि होती है जिसको अंडरटोन हम कहते हैं, आंतर ध्वनि, ऐसी कोई अनुभव की ध्वनि रहती है जिसके पहचान के लिए हमें कुछ हद तक पात्रता में जाना पड़ता है। ऐसी कोई विशिष्ट प्रकार की जिसकी वाणी में ध्वनि होती है, ऐसी वाणी से ज्ञानी पहचाने जाते हैं। इससे भी छोटे मोटे और भी लक्षण भी हैं, लेकिन सही बात है अपनी पात्रता की। हमें ये भाव अवश्य होता है मुमुक्षुओं को कि ज्ञानी को हम पहचाने तो हमारा कल्याण हो जाए, क्योंकि जिसको एक दफे भी ज्ञानी की पहचान होती है उनको आत्मस्वरूप की पहचान होती ही है, नहीं हुए ऐसा नहीं होता। जिसको ज्ञानी की पहचान होती है उसको इतनी महिमा इसकी आती है सर्वाधिक। कल पिछले चला था रात को, परमेश्वर बुद्धि से, सर्वार्पण बुद्धि से, परमात्मा बुद्धि से उसको देखने लगता है कि मेरे लिए तो ये देहधारी दिव्य मूर्ति परमात्मा ही है, ऐसा दिखने लगता है। ये बात श्रीमद् रायचंद जी ने बहुत अपने अनुभव की प्रैक्टिकल साइड की है। 254 में पंक्ति लिखी है उन्होंने कि किस जीव को आत्मस्वरूप मां आत्म पदार्थ का पदार्थ निर्णय होता है। बढ़िया से बढ़िया इसमें कौन सा साधन है, तो इस विषय में उन्होंने ये लिखा है कि सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि यह परम धर्म है, परम धर्म ऐसा लिखा है। क्या परमेश्वर बुद्धि ऐसा शब्द लिखा है? संवाद के मुमुक्षुओं को पत्र लिखे हैं, पर मुमुक्षुता कहाँ से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, इसमें कैसे वो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं वो तो ये सत्पुरुष की विद्यता मानता है। सत्पुरुष के प्रति परमेश्वर बुद्धि में जब आते हैं तब ये पदार्थ के निर्णय के लायक होता है, वहां तक पात्रता नहीं होती कि ज्ञान को पहचान सके। तो ऐसे छोटी मोटी बहुत सी पात्रता के विषय में बहुत सी बातें हैं। हमें एक संकलन संपादित किया है, टाइटल है इसका दूसरा मत कुछ खोज, दूसरा कुछ मत खोज, ऐसा टाइटल से एक हमारा संपादकीय है, छोटी सी किताब। इसके उपोद्घात में हमने पात्रता का विषय डाला है कि कितने कितने लक्षण होते हैं, कैसे कैसे पात्र जी के लक्षण होते हैं आत्मार्थी के, वैसे लक्षण वाले, वैसी योग्यता वाले जीव ही ज्ञानी पुरुष को पहचान सकते हैं, और जिसने पहचान लिया उसका तो बेड़ा पार हो गया, तो कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। तो गंभीर प्रश्न है और कठिन भी है, पात्रता नहीं हो वहाँ तक। पात्रता आने से ये सुगम है, सरल है, और इसकी प्राप्ति कहीं भी हो सकती है। आगे का प्रश्न है, पर्याय भोग में नहीं, अर्थात पर्याय ही में नहीं तथा पर्याय जितना में नहीं, इन दोनों वाक्यों में विषयभूत वाच्य में अंतर है क्या? नहीं, अंतर नहीं है। जो जो पर्याय जीतना में नहीं वही कहने का वहाँ अभिप्राय है, क्योंकि पर्याय जीतना ही मैं हूँ ऐसा अनुभव वर्त रहा है, इसलिए द्रव्य है उसमें अहमपणा नहीं हो सकता। द्रव्य में अहमपणा जब होता है तब पर्याय जीतना में नहीं ऐसा होता है, और पर्याय में नहीं ये संतान के नास्ति वाचक वचन है। वास्तव में संतान का विषय अपना त्रैकालिक आत्मस्वरूप ही है, वही मैं हूँ उतना पकड़कर वो चिपक गई अपने स्वरूप के साथ, श्रद्धा लपेट गई। फिर मैं दूसरा कुछ नहीं हूँ, ये तो मात्र कहने की बात है। श्रद्धा विषय नहीं करती, जब विषय ही नहीं करती फिर इसकी चर्चा क्यों? फिर भी इसकी चर्चा हमें करनी है तो ऐसे कर सकते हैं कि एक समय की पर्याय भी जो बगल में है वो भी मैं नहीं हूं। तो इस श्रद्धा प्रधान कथनी में ऐसी नास्ती से बात आती है, और ज्ञान प्रधान कथन से हम ये कह सकते हैं कि पर्याय जितना मैं नहीं हूँ ये कहने का इस कथन अभिप्राय है।
पर्याय जितना मैं नहीं हूँ इसमें पर्याय समाविष्ट नहीं हो जाती है क्या?
कैसे मतलब प्रश्न को और स्पष्ट करें।
पर्याय जितना मैं नहीं हूँ ऐसा कहने में जो वाच्य पकड़ना आता है उसमें पर्याय समाविष्ट नहीं हो जाती है क्या? वाच्य
इसमें अहम पणा स्थापित नहीं करना है। अहम पणा तो करना मुख्य कार्य प्रधान का होता है, और ये प्रभु में स्वस्थान में करती है, एक समय की पर्याय को विषय नहीं करती है। ऐसा बतलाने के लिए कह सकते हैं कि पर्याय एक जितना में नहीं है उसने बात कर सकते
पर्याय को मैं नहीं हूँ उसमें समाहित नहीं होगी ज्यादातर।
पर्याय वो मैं नहीं
इसमें पर्याय कितनी समाविष्ट नहीं,
उसमें पर्याय का ज्ञान आ गया। समाविष्ट किस तरह होते कि पर्याय का ज्ञान आता है तो किस रूप में आता है? एक वस्तु का अंग है कि जिसमें अहम प्रणाप करने लायक नहीं है स्वता को, ऐसा ज्ञान होता है। लेकिन ज्ञान इसका दूसरा अनेकांतिक रूप से जानता भी है कि ये वस्तु का अंग है, वस्तु के अंगभूत अवयव है, इससे कोई दूसरी बात उसमें नहीं है। ऐसे तो प्रयोजन की सिद्धि के लिए उसमें हमें अहम पणा नहीं करना है। भले ही वो पदार्थ का एक अंग होते हुए भी हमारे प्रयोजन की सिद्धि के लिए हमें उसमें अहम पणा स्थापित नहीं करना है, उतनी बात है। मैंने एक कथन है वो श्रद्धा प्रधान है, लेकिन वो भी नास्तिक बात है, क्योंकि श्रद्धा तो अस्तित्व को ही ग्रहण कर लेती है, बाद उसका कोई प्रवृत्ति नहीं है न कोई विषय है। फिर भी समझाने के लिए, इस श्रद्धा के बलन को समझाने के लिए नास्तिक का कथा इस ढंग से कहा जाता है तो सही है। विशेष ज्ञान का ज्ञान अनुमान, विशेष ज्ञाकार ज्ञान के अनुभव के समय लक्ष्य पर भी और रहता है, तथा सामान्य ज्ञान के अनुभव के समय लक्ष्य त्रिकाली ज्ञान की और रहता है, तो क्या सामान्य ज्ञान में त्रिकाली ज्ञान का प्रतिबिंब पड़ता है जैसे कि विशेष ज्ञाकार ज्ञान में कर्ता प्रतिबिंब पड़ता है? क्या ज्ञान रूप की एक ही समय विशेष व्यापार ज्ञान रूप तथा सामान्य ज्ञान रूप दोनों परिणाम चल रही है? क्योंकि अपने प्रवचन में कहा कि सामान्य ज्ञान बिना विशेष ज्ञान होता ही नहीं, ठीक है, ये एक ही अवस्था के दो अंग है, ज्ञान सामान्य और ज्ञान विशेष। ज्ञान विशेष बहिरंग है और ज्ञान सामान्य इसी पर्याय का अंतरंग है। हमें अंतर्मुख होना है
इसलिए हमें अंतरंग को ग्रहण करना है, बहिरंग को हमें छोड़ देना है। तो एक ही पर्याय एक ही है, दोनों पर्याय नहीं है, दो पर्याय नहीं है, पर्याय एक है, पर्याय के दो अंग है, एक समय के पर्याय के दो अंग है, सामान्य और विशेष। तो ये जो दूसरा प्रश्न है वो तो पहले साफ किया जाए, फिर आगे की बात हम कि स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है कि विशेष निराकार ज्ञान को आविर्भूत होने से अनुभव करके मैंने आविर्भूत रूप से अनुभव करने से पर पदार्थ में आश्रय हो ही जाता है, पर पदार्थ का आश्रय अनिवार्य रूप से हो ही जाता है, इस आश्रय को हम रोक नहीं सकते। अगर ज्ञान सामान्य का आविर्भाव किया गया आश्रय नहीं कर रहा है, ज्ञान सामान्य का अगर आविर्भाव किया हमने तो जो इसके बिल्कुल संलग्न है, बिल्कुल दूर नहीं है और इसके सदृश है, ऐसा जो त्रिकाली ज्ञान सामान्य उसका आश्रय अनिवार्य रूप से हो जाता है, आश्रय करने के लिए दूसरी कोई प्रक्रिया करनी पड़ती नहीं है। बात रही पहचान पूर्वक, बिना पहचान बिना भाव उपासन इस हद तक की प्रक्रिया हो ही नहीं सकती, कर नहीं सकते। तो इसलिए जो भाव उपासन का विषय है वो इसका महत्व बहुत है।
ज्ञान सामान्य
को पर्याय कह सकते हैं? नहीं, ये कारण को पर्याय है तो प्रेता का वर्तमान है,
ज्ञान सामान्य नहीं,
ज्ञान सामान्य पर्याय में है, प्रेता नहीं। जो वर्तमान उत्पादित अवस्था है उसका ये अंतरण है, और वो त्रिकाली का वर्तमान है वो तो सारे द्रव्य का वर्तमान है, पूरा द्रव्य का ये वर्तमान है। तो आश्रय के लिए
वर्तमान
भेद से लेने तो प्रत्येक गुण का है, तो नियम सार में विषय चला तो पहले तो एक एक गुण की बात नहीं, सहज ज्ञान लिया, ज्ञान गुण में सहज ज्ञान लिया, दर्शन में सहज दर्शन लिया, सुख में सहज सुख लिया, तो एक एक गुण की बात नहीं, खुद सारे द्रव्य की पंचम भाव रूप परिणति को कारण शुद्ध पर्याय कहा। इसे थोड़ा अधिक सूक्ष्म है, अपन लेंगे अगर समय रहा तो शरीर में थोड़ा बहुत सूक्ष्म, तो ये चलते प्रश्न में आविर्भूत होने की बात है। फिर भी इसमें ये शर्त है कि अगर हमें भाव आसन होता है और दृढ़ता लक्ष्य पूर्वक ज्ञान सामान्य का आविर्भाव होता है तो सहज रूप से द्रव्य का आश्रय हो जाता है और स्वानुभव की प्राप्ति हो जाती है। और प्रश्न है कि सामान्य ज्ञान जीव का लक्षण बतलाया, यहां सामान्य ज्ञान का अर्थ सामान्य ध्रुव स्वभाव है या प्रगट पर्याय? प्रगट पर्याय की बात है, ध्रुव स्वभाव की या कारण सिद्ध पर्याय की बात नहीं। गुण धर्म शक्ति एवं सामर्थ्य में क्या अंतर है? मोक्ष मार्ग में इन सब में अंतर समझना किस प्रकार प्रयोजनभूत है? मैंने गुण ये शक्ति रूप है, धर्म है तो द्रव्य के भी होते हैं, गुण के भी होते हैं, पर्याय के भी होते हैं। द्रव्य के गुण होते हैं, पर्याय को गुण नहीं होते, पर गुण के भी गुण नहीं होते, निर्गुणा गुणाहा, गुण के गुण कभी नहीं होते, ऐसा सूत्र है। लेकिन धर्म तीनों को ही होते हैं और एक एक को अनंत है, द्रव्य को का अनंत धर्म, गुण का अनंत धर्म, पर्यायों का अनंत धर्म। इसलिए गुण अलग चीज अलग अलग बात है, धर्म अलग है, शक्ति शक्ति और गुण एक ही बात है। पर कभी पर्याय की सामर्थ्य योग्यता को भी शक्ति कहने में आती है, या व्यक्ति और शक्ति की अपेक्षा लेना गुण की अपेक्षा मत लेना। जैसा संस्कार की शक्ति है, शक्ति रूप है, ये संस्कार व्यक्ति रूप नहीं है जहां तक प्रकट नहीं हुआ वहां तक। तो वहां व्यक्ति और शक्ति के रूप में देखना है, गुण के रूप में नहीं देखना है। मोक्ष मार्ग में इन सब में अंतर समझना, हाँ अंतर नहीं समझे तो एक को दूसरी बात समझ लेंगे, और ये जो पदार्थ के विषय में एक बात को दूसरी बात समझे तो ग्रहित मिथ्या हो जाता है, सीधा ही नया ग्रहण हो जाता है। देखिए ये प्रश्न उठते ही हमें थोड़ा विचार आता है कि तत्व ज्ञान के अभ्यास करने वाले मुमुक्षुओं को थोड़ी जिम्मेवारी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है कि अगर हम तत्व ज्ञान के अभ्यास करते करते भूल कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, तो हमारा अग्रहित मिथ्यात छूट करके ग्रहित मिथ्यात में प्रवेश हो जाता है। अनादि से अग्रहित मिथ्यात्व तो है ही, लेकिन जब हम तत्वज्ञान के अभ्यास में आए तो हमारी जिम्मेवारी अग्रहित मिथ्या दृष्टियों से कुछ अधिक हो गई। हायर द पोस्ट हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कुछ हायर पोस्ट में आए क्योंकि दूसरे दूसरे लोग तो समाज में तत्वज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं और हम लोग करते हैं, तो हमें तत्वज्ञान का अभ्यास करने में हमारी जिम्मेवारी समझनी चाहिए कि हम जो सही ढंग से नहीं करेंगे और इसमें प्रयोजन भूत विषय में अन्यथा कल्पना हो जाएगी तो ये फांसी का फंदा है बड़ा, ग्रहित मिथ्यात्व में आ जाएंगे। ये बात इस प्रश्न के साथ कुछ समझने की आवश्यकता है, इसलिए हमने थोड़ी लंबा करके कही। क्या मुमुक्षु जीव को प्रतिदिन भोजनादि अन्य क्रियाओं के पूर्व देव दर्शन आवश्यक है? यदि आवश्यक है तो देव शास्त्र गुरु एवं सत्पुरुष इन चारों में से इनके संग की प्राथमिकता रहती है। ऐसा है कि देव दर्शन दो प्रश्न है, हो गया है तो अलग अलग प्रश्न है, एक से दूसरा का संबंध नहीं है। मुमुक्षु को प्रतिदिन भोजनादि अन्य क्रियाओं से पूर्व देव दर्शन आवश्यक है। देव दर्शन ये कोई रूढ़ी रिवाज नहीं है और पहले पीछे के इतनी कोई रूढ़ी रिवाज की परिस्थिति इसमें नहीं रखनी है। हमें तो किस तरह से देव दर्शन करना जो बात आगे चल चुकी उस तरह से कभी भी करें, पर्याप्त मात्रा में ये बात दर्शन की होगी। अगर हम ये सारे व्रत ले लें कि हमको पहले देव दर्शन करना है, पीछे कुछ भी मुंह में चीज रखनी है इसके पहले नहीं रखेंगे, तो उदय की तो कोई हमारी वश की परिस्थिति नहीं रहती है, पर व्रत हमें भंग करना भी नहीं है तो किस आकुलता के साथ हम व्रत को पालन करेंगे इसका विचार करके व्रत ले लेना हमारी शक्ति को देख करके। व्रत लेने में कोई बाधा नहीं है, न अनुचित भी है, उचित होने पर भी उसका उसको विवेक से ग्रहण करना आवश्यक है। किसी भी व्रत को अपनी शक्ति के अनुकूल देख करके अंदाजा लगा करके हमारे परिणाम नहीं बिगड़े, व्रत तो हमने इसलिए लिए कि हमारे परिणाम बिगड़े नहीं सुधरे, पर व्रत लेने के बाद अगर हमारे परिणाम बिगड़ते हैं तो प्रयोजन तो विपरीत हो चुका,
पर हमने ये माना कि हमारा व्रत टूटता नहीं है, बराबर पकड़ के हमने रखा है। तो क्या हुआ कि एक आदमी बैलगाड़ी में बैठा था, तो हमारे गुजराती में जो बैल की रस्सी होती है उसको नाड़ा कहते हैं, और जो पायदान की रस्सी है उसको भी नाड़ा कहते हैं। तो कोई जो बैल थे वो तूफान में चढ़ गए, और गाड़ा जो है, गाड़ी जो है उसका बैलेंस आउट होने की परिस्थिति हो गई। तो बैलगाड़ी वाले ने बोला भाई नाड़ा जरा मेरा पकड़ो 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 नाड़े के, तो उसने अपना नाड़ा पकड़ लिया। ऐसा व्रत का नाड़ा हमें नहीं पकड़ना है, हम गिर जाएंगे, इस नाड़े को पकड़ने से हम गिर जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। मैंने प्रसादी के विषय में टोडल मंजी साहब ने काफी स्पष्टीकरण दिया कि पहले तो तत्व ज्ञान का अभ्यास करना, फिर व्रतादिक लेने के पहले इसके गुण अवगुण का विचार करना, इसकी पूरी छानबीन करके जानकारी करके फिर अपनी शक्ति के मुताबिक व्रत ग्रहण करना, ये इसका क्रम है। हम कम क्रम विप्रयास में रह जाए और व्रत ग्रहण कर ले तो प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूरा करें इस पर्चे में, फिर पेंडिंग रह जाएगी बात। यदि आवश्यक है तो देवशास्त्र गुरु एवं सतगुरु से इन चारों में से किनके संग की प्राथमिकता है? मैंने जीवंत में तो सतगुरु ही है, और तो कोई निमित्त हमारे पास नहीं है, कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो जीवंत है इसकी प्रधानता होनी चाहिए, ये कहने की आवश्यकता नहीं। अच्छा समाचार हाँ समाचार स्मृति नहीं। तो ये प्रश्न में थोड़ा और लंबा ले रहे कि कल बात चली थी कि सत्पुरुष भी है और आगम भी है, शास्त्र जिसको हम कहते हैं, किसके संग पहले करें, ये प्रश्न है हमारे सामने। तो पहले सत्पुरुष का संग करें, अगर सत्पुरुष का संग उपलब्ध न हो तो फिर दूसरा नंबर शास्त्र का आता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे विवेक की एक क्षति है, क्षति तो है ही, किंतु हमारे एक क्षति के भीतर में कुछ ज्यादा गड़बड़ी भी है। अगर हमें पता है कि ये सत्पुरुष यहाँ पर विराजमान है, फिर भी हमको जाने की अनुकूलता नहीं है, तो हम शास्त्र पढ़ेंगे, हम सत्पुरुष के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि शास्त्र हमारे घर पे उपलब्ध है, सत्पुरुष के पास तो जाना पड़ता है जहां वो विराजते हैं। तो हमारी अनुकूलता को हमने प्रधानता दी है, शास्त्रों को नहीं दी है, एक तो ऐसी बात हो जाती है। दूसरी बात ऐसी भी होती है कि सत्पुरुष के पास जाने में कभी हमारा जो मान सम्मान है उतना स्टेटस के साथ हमारा वहां आदर नहीं होता है। हम विद्वान हैं, हमारे जो समाज में स्टेटस अच्छी है, उतना इनके पास नहीं रहता है हमारे, इसलिए हमें कहीं सत्पुरुष के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। वो जो कहते हैं इससे अधिक कहने वाले आचार्यों के कथन शास्त्र में हैं, हम स्वाध्याय कर लेंगे। ऐसे भावों से यदि सत्पुरुष का सत्संग कोई छोड़ देता है और आगम के अभ्यास को चालू रखता है तो ये अप्रशस्त शास्त्रीय अभिनिवेश है। क्या कहते हैं श्रीमद् रायचंद्र जी, उसको प्रशस्त भी नहीं बतलाया, अप्रशस्त है, वैसे तो शास्त्र का अध्ययन करना प्रशस्त भाव में होता है, लेकिन अभिनिवेश मैंने अभिप्राय जो है वो एक प्रशस्त हो गया है मान सम्मान का। तो जिसकी मान कसाई बहुत बड़ी हो उसको सत्संग का मूल्य और सत्शास्त्र पढ़ने में जो भाव होता है उसमें जो अंतर है उसका पता नहीं चलता है। और अंतर कैसे है, अब ये कहेंगे बात तो दोनों परमात्मा की करते हैं और आचार्य तो बड़े अच्छे करते हैं सत्पुरुष से भी, फिर क्या अंतर आप कैसे रखते हो और उसमें भी प्रधानता सत्पुरुष को देते हो। तो ये है कि हम अगर शास्त्र पढ़ते पढ़ते कुछ इसके अर्थ में भाव में कुछ भूल करते हैं तो ग्रेड मिथ्या तो हो जाता है। शास्त्र ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारी ये गलती हुई, कहेंगे क्या, बताएंगे क्या कि ये कथन तुमने पढ़ा लेकिन तुम्हारी समझ यथार्थ नहीं है, गलती वाली है, शास्त्र कैसे बताएंगे। विद्यमान सत्पुरुष के पास ये एक अधिक मौका है कि हमारी गलती इनकी नजर में आ जाती है और वो बता सकते हैं और हमें बचा सकते हैं, शास्त्र नहीं बचा सकते। तो इस ऐसी गलती में भूल तो गंभीर होती है, ग्रहित मिथ्या तो पहुंच जाते हैं, यहां में मान हो जाता है, समझो कि तत्व ज्ञान का अभ्यास होता है शास्त्र पढ़ते पढ़ते कई बातें हम समझ लेते हैं जो बात पहले नहीं समझी थी वैसी वैसी बहुत सी बातें हम समझे, इसमें अहम पणा हो गया है। पर हमें पता ही नहीं रहा कि हमें क्षोभ का अहम भाव हुआ है तो शास्त्र कैसे बतलाएगा कि तुझे अभी तो अहम भाव हो चुका है छोड़ दे इसको। लेकिन ज्ञानी पुरुष के सानिध्य में थोड़ी सी बात चलेगी, अरे प्रश्न भी पूछेगा ने तो समझ लेगा कि उसको कुछ गर्व हो गया है, इसके प्रश्न में ये टोन छिपा रहता नहीं है, उसकी नजर उतनी सूक्ष्म होती है, ज्ञान इतना सूक्ष्म होता है को तो प्रश्न में पकड़ लेते हैं, बातों में पकड़ लेते हैं, छोटी मोटी बात करते उसको पता चल जाता है कि ये भाई साहब कोई आगे पीछे फिसल करके गिर जाएंगे, पैर इसका ठीक नहीं चल रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं तो उसको ठीक करें। तो उस प्रकार का जो लाभ है वो तो जिस सत्समागम में होता है ऐसा शास्त्र पठन में हो ही नहीं सकता और आत्मा बच नहीं सकता, मनुष्य जीव बच नहीं सकता। तो हमें व्यापार करने में नफा कर मुनाफा करने के लिए तो दुकानदारी की, लेकिन मुनाफा की जगह नुकसान हो जाए तो ये तो हमें कतई नहीं करना है, भले मुनाफा कम होवे देरी से होवे कोई बात नहीं, लेकिन नुकसान में तो हमें जाना ही नहीं। ऐसी सावधानी वास्तविक जीवन में होती है, वैसी सावधानी अगर यहाँ नहीं हुई तो हम वास्तविक समझ में नहीं है, हम कुछ हवा में ख्वाब में चलते हैं ऐसा समझना चाहिए।
इसमें एक प्रश्न उठता है आपके बाद में कि जैसे जो अज्ञानी है और वो किसी अज्ञानी के समागम में ये सोचते कि ये क्या अज्ञानी है, अज्ञानी उस अज्ञानी के समागम में है और ये सोच के सब ये ज्ञानी है और वो उसी के पास इसलिए रुक रहा है मैं तो ज्ञानी के समागम में हूँ, जब इस ज्ञानी के समागम में तो मुझे दूसरे के पास जाने की क्या आवश्यकता है, तो वो इस भ्रम में आगे नहीं बढ़ पाता कि बाहर बाहर जगह जगह ज्ञान के पास जाने जा सकते हैं, ज्ञानी है ना सामने ऐसा समागम मेरे को मिल रहा है, तो इस भ्रम में वो वहीं रुक जाता है क्योंकि ज्ञान की तो पहचान है।
आपकी बात तो ऐसा है कि जो एक ज्ञानी को पहचानता है वो सभी ज्ञानी को पहचानता है, एक हीरे को पहचानता है वो सारे हीरे को पहचान पाएगा। तो जिसको एक ज्ञानी की पहचान है उसको दूसरे ज्ञानी की पहचान नहीं हो ऐसा तो बने ही नहीं, लेकिन जब अज्ञानी को ज्ञानी मान लिया है तो उसको पहचान ही नहीं है, ये बात सिद्ध होगी। जब जिसको पहचान की क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है, तो उसको वहां तक निर्णय नहीं करना चाहिए, जिज्ञासा में रहना चाहिए कि ज्ञानी कैसे होते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं, इस विषय में मैटर क्वेश्चन रखना चाहिए, निर्णय नहीं कर लेना चाहिए। क्या होता है हमारे समाज में कि जिनको बहुत लोग मानते हैं ज्ञानी, वो ज्ञानी, जिसको कोई जानते मानते नहीं है वो ज्ञानी होने पर भी ज्ञानी नहीं। तो ये बात हो गई, दूसरे की चीज को हमने कुछ ही नहीं लेकर के, कुछ ही नहीं क्या कहते हैं, उधार लेकर के हमने मान लिया कि हमारे पास ज्ञानी की संपत्ति है। ऐसी गलती नहीं करना चाहिए।
यानी वो पहचानने की पात्रता कैसे प्रकट हो?
हाँ, पात्रता कैसे प्रकट हो, ये प्रश्न बहुत सुंदर है। इतने प्रश्न आया लेकिन ये प्रश्न नहीं आया, इस प्रश्न से मुझे बहुत प्रसन्नता है। पात्रता कैसे प्रकट हो, ये हमारे मुमुक्षु के लिए प्रथम प्रयोजनभूत प्रश्न है। दूसरे प्रश्न इसके बाद के होते हैं, इसके पहले नहीं होने चाहिए। सबसे पहले ये प्रश्न होना चाहिए कि पात्रता कैसे प्रकट हो। तो इस मार्ग की, इस जिन मार्ग की एक सुंदरता है और एक सुविधा भी है कि पात्रता के प्रकट करने में कोई पूर्व शर्त नहीं है। कितनी सुविधा है, जैसे केवल ज्ञान प्रकट करना हो तो मुनिपना की पूर्व शर्त है। मुनिपना चाहिए तो सम्यक दर्शन की पूर्व शर्त है, इसके बिना हमें केवल ज्ञान या मुनिपना को ग्रहण नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। और सम्यक दर्शन के लिए भी एक शर्त है पात्रता की, कि जिस पात्रता में हम स्वरूप का निर्णय कर सके, स्वरूप का भाववासन कर सके। ये अनिवार्य रूप से किसी जीव को बिना स्वरूप के भाववासन सम्यक दर्शन नहीं होता। और ये भाववासन के लिए पात्रता की पूर्व शर्त है, सब्जेक्टिव कंडीशन, ये ऊपर ऊपर के पर्याय मिलती है, लेकिन पात्रता के पर्याय से आगे कोई पूर्व शर्त नहीं रखी गई, वास्तविकता में है भी नहीं। तो एक तो ये सुविधा है और ये सुंदरता भी है मार्ग की। तो हमें ये खुशी होनी चाहिए कि हमारे भूतकाल में हम कैसे भी परिणाम में गुजरे हो, हमें कोई चिंता नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम एक सेकंड में पात्रता प्रकट कर सकते हैं, पात्रता में आ सकते हैं बिना किसी पूर्व शर्त। कितना भी पाप किया हो, कितने भी जीव पापी हो सो, दूसरे सेकंड में वो पात्रता में आ सकता है। पूर्व सेकंड में कितना भी पाप को परिणाम हो, ये एक सुविधा है, एक सुंदरता है। और पात्रता वो है कि हमें हमारा आत्म कल्याण के सिवा हमारे जीवन में दूसरा कुछ नहीं करना है, करना पड़े दूसरी बात है, लेकिन करना नहीं है, करना एक ही चीज है। अगर यहाँ आ गए, हमारी पात्रता खुल गई उसी समय में, फिर आगे की बात सब सरल है, सब सुगम है। अगर ऐसा नहीं हुआ, वहां तक सब बात कठिन है, दुर्गम है, दुर्लभ है, ये दूसरों को लागू पड़ता है, पात्रता वाले को लागू नहीं पड़ता। तो इसमें कोई न लंबी चौड़ी बात है, न कोई लंबे चौड़े आगमों में पढ़ने से के बाद पात्रता होती है, समझने के बाद पात्रता होती है, कुछ नहीं है। त्रियंश को भी, नारकियों को भी, देवों को, मनुष्य को, किसी भी प्राणी, संगनी प्राणी को अपने विचार की भूमिका में एक बात दृढ़ निश्चित हो जावे कि हमें हमारे जीवन में हमारा आत्मकल्याण कर लेना है। आत्मकल्याण नहीं करेंगे तो न जाने कि बंटोल चलता है परिभ्रमण में, तिनका कहां उड़े उड़ करके पड़ेगा किसी को पता नहीं, कौन जीव कहां गया इसका रिसिप्ट नहीं मिलता है, कहां गया, पहुंच आती है क्या, पहुंच कहीं से नहीं आती, यहां से गया भाई साहब, गया सो गया, किसी को पता नहीं कहां गया। तो इसके पहले पहले हम ये दृढ़ निश्चय में आ जाएं तो हमारी सब कार्यवाही इस निश्चय के दौरान चलेगी। अगर हमारा ये निश्चय नहीं है तो हमारा कोई ठिकाना नहीं रहेगा, यदवा तदवा हम क्रम भंग क्रम विपर्यास में रह करके जैसा भी जब विचार आया इच्छा हुई वैसा करते रहेंगे और भटकते रहेंगे, ये बात हो जाएगी। तो ये प्रश्न बहुत सुंदर है और अधिक चर्चने लायक भी है, तो सभी आगे भी इसकी चर्चा करेंगे, कोई समय समाप्त।